विशुद्ध बुद्धि लद्ध सवत्ता, विशुद्ध बुद्धि से समस्त पदार्थों को जानने वाले, लद्ध सर्व अर्थ, लद्ध ने प्राप्त हो गए ने जान गए, तथा तिहुवन सिरसे हरया, तीन लोक के शिर रूपी शिखर पर स्थित ऐसे सब सिद्ध भट्टारक प्रसन्न होवे। इनको भी भट्टारक कहते हैं, अरिहंत को तो कहते ही, अब यहाँ सिद्धों को भी लिखा, ऊपर लिखा ना भड़ार या सव्वे, सभी सिद्धों को यहाँ नमस्कार किया है। अब अरिहंतों की बात करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी किरणों का मंडल त्रिभुवन रूपी भवन में फैला हुआ है। ऊपर क्या लिखा है, त्रिभुवन भवन, त्रिभुवन रूपी भवन। अब ये तीन भवन कितने बड़े हैं वो हमने देखा था अभी देवलाली, तो ये तीन भवन रूपी जो उसका जो तीन भुवन रूपी जो भवन है उसमें पच्छक अवबोध किरण परिवेड़ो, प्रत्यक्ष अवबोध यानी ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान यानी केवल ज्ञान रूपी किरण परिवेड़ो यानी किरणों का मंडल वो परिवेष्टित है यानी फैला हुआ है। उयो भी अनत्थवण, तथा जो उदित होता हुआ भी अस्त होने से रहित है, सूर्य की उपमा देते हैं भगवान को भी कि उनकी भी केवल ज्ञान रूपी किरणें सर्वत्र फैली है, परंतु सूर्य की उपमा देते हैं तो सूर्य तो अस्त होता है परंतु इसका कभी अस्त नहीं होता, अस्त होने से रहित है अनर्थ वणो। ऐसे अरहंत दिवायरो जयो, अरहंत रूपी सूर्य दिवाकर, दिवायर यानी दिवाकर, दिवाकर शब्द है ना, उसका अर्थ होता है सूर्य, अरहंत रूपी सूर्य जयवंत होवे। सूर्य की उपमा देते हुए यह बताया कि सूर्य तो अस्त को प्राप्त होता है परंतु इनके केवल ज्ञान रूपी जो सूर्य है वो कभी अस्त को प्राप्त नहीं होने वाला। देखो रत्न त्रिरूप खड़ग के आघात, खड़ग यानी शस्त्र तलवार, रत्न त्रिरूप खड़ग के आघात से मोह की सेना के शिर समूह को उतार कर, ऊपर लिखा देखो ती रयन, रयन है रत्न, तीन रत्न है रत्नत्रय इसको बोलते, खड्ग ने खड्ग निहाए उसका आघात से अनुत्तार्य मोह सैन्य सिरणी बहो, मोह की सेना के शिर समूह को यानी पूरी सेना का वो नाश कर दिया, उतार लिया। शिर समूह ने अनेक सेना सैनिकों के सिर, सिरों के समूह उतार दिए खड़ग से, यानी उस मोहरूपी सेना को काट डाला, नष्ट किया। और के आयर्याउ पसीवउ परिवालिय भव्य जीवलो, भव्य जीव लोक का पालन करने वाले, परिवालिय ने पालन करने वाले आचार्य रूपी राजा प्रसन्न हो गए। आई लिया पसी हो, अब उपाध्याय की बात करेंगे।
यहाँ जो आप देख रहे हैं रत्न रूप खड़ग के आघात से मोह की सेना के शिर समूह को, यानी उन्होंने दर्शन मोह और उपचार की मोह दोनों को,
हाँ मोह की सेना ने पूरे ही मोह दर्शन मोह तो खत्म हाँ किया ही है, तभी तो समय दृष्टि हुए। अब ये अत्यंत स्थिरता है उनकी और आचार्य पद पर विभूषित है तो वहाँ दृढ़ता भी बहुत है, चारित्र की भी बहुत दृढ़ता है, इसलिए मोह के सेना के शिर समूह को उतार करता, यानी मोह को नष्ट कर। दर्शन मोह तो है ही नहीं अभी, चारित्र मोह में भी हमने देखा था ना, वो तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। ऐसे आचार्यों को यहाँ नमस्कार किया है। अब उपाध्याय की बात करते हैं। पसियंतु सया उवज्जाया, वे उपाध्याय परमेष्ठी सदा प्रसन्न होवे। अभी वो कैसे है तो उसका वर्णन करें। जिन्होंने आर पार रहित अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वाले भव्य जीवों को प्रकाश दिया है। क्या कहते हैं, कोई अंधेरा होगा किसी रूम में या किसी विशिष्ट स्ट्रीट में तो उसको एंड है ना, यहाँ से वहां तक अंधेरा है, या नदी बहती है तो उसको आर भी है और पार भी है, एल तीर भी है और पैर तीर भी, पैल तीर भी है, तो उसकी कोई लिमिट होती है। परंतु ये कैसे, आर पार से रहित ऐसा जो अज्ञान रूप अंधकार है उसमें जो भव्य जीव भटक रहे थे उनको प्रकाश दिया है। ऊपर हम देखते हैं अन्नान अंधयारे, अज्ञान रूपी अंधकार में, वो अज्ञान रूपी अंधकार कैसा है, अनोर पारे जिसका कोई आर पार नहीं है, यानी बहुत फैला हुआ है, कोई किनारा
नहीं,
जिसका कोई किनारा नहीं, ऐसा जो अज्ञान अंधकार है भमंत उसमें भ्रमणे वाले भवियाणम भव्य जीवों को उच्चो जयी कवो, कवो ने किया जो इन्हें उद्योग किया है, प्रकाश किया है, प्रकाश दिया है, तथा जिन्होंने दुख रूपी तीव्र तृषा से व्याकुल हुए। अच्छा ये चार और पांच इकट्ठा लिया है और क्या किया उन्होंने, दुख रूपी तीव्र तृषा से व्याकुल हुए तीन लोक के भव्य जीवों को दुह तिहुवतिसा विनडिय तिहुवन भवियान सुठुरायण, उनको श्रुतरूपी जलपान प्रदान करने के हेतु से अतिशय राग अर्थात अनुकंपा से धर्म रूपी प्याऊ को स्थापित किया है। प्याऊ ने पानी जल पिलाते हैं ना, कोई भी आवे जावे उनके लिए, कोई मार्ग में ऐसे प्याऊ, पहले ऐसे पद्धति थी, पीने का जल उपलब्ध होवे इस तरह से प्याऊ बनाते थे। तो इन्होंने क्या किया देखो, अनुकंपा, ये हमारे जैसा तीव्र राग उसकी बात नहीं है, ये अनुकंपा जो है भव्य जीवों के प्रति जो अनुकंपा है, संसार में जो भटक रहे हैं, दुखी है, ऐसे जीवों को ये क्या करेंगे, अनुकंपा से पानी पिलाएंगे, क्या करेंगे, ये उपदेश देंगे अपना स्वरूप क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना है। उपाध्याय से ही ये बात अधिक रूप से, क्योंकि पूरे संघ को भी पठन पाठन के ये अधिकारी है उपाध्याय, श्रावकों को तथा मुनियों को भी ये सिखाते हैं। तो क्या कहते हैं, ये कैसे जीवों को यहाँ प्याऊ बनाइए, तो तीव्र तृषा से व्याकुल है, दुख रूपी तीव्र तृषा, ये कौन सा दुख है, हाँ भेद ज्ञान नहीं, अपना स्वरूप नहीं पहचान रहे हैं, और इसलिए वो मोह है, राग है, द्वेष है, उससे दुखित है, ऐसे तीव्र तृषा से व्याकुल हुए, ऐसे जो तीनों लोक के जो भव्य जीव है उनको श्रुत रूपी जलपान प्रदान करने के, यानी शास्त्र की बात समझाने हेतु अनुकंपा से धम्म पवा स्व जलवान पयाणेन परिठविया ने स्थापित किया है, धर्म रूपी प्याऊ को स्थापित कर दिया है। ऐसे उपाध्याय पसियंतु सयास उवझाया, ऊपर लिखा है ना, ये उपाध्याय सदा प्रसन्न होवे। अब छठे नंबर के मंगलाचरण का श्लोक देखते हैं। जिन्होंने चिरकालीन प्रमाद रूपी कुशील के भार को उतार कर शील के भार को धारण किया है, यानी जो शील सहित है और प्रमाद रूपी कुशील को उन्होंने त्याग दिया है, यानी क्या ना, संधार्य शील हरा और उत्तार्य चिर प्रमाद दुशील भरा। संधार्य शील हरे ने शील को धारण किया है और उत्तार्य ने उतार दिया है, किसको, चिर प्रमाद रूपी दुशील को उतार दिया है। साहू जयंतु सवे, ऐसे सभी साधु जयवंत वर्तो, वो कैसे है, शिव सुह पह संकियाहु निगलिय भया, जो शिव सुख के मार्ग में स्थित है एवं निगलिय भया, निर्गलित भया, यानी जिन वे जो भय से रहित है, अभी मोह है ही नहीं ना, तो भय का है काम, सम्यक दृष्टि को भी दृष्टि अपेक्षा से कहते हैं वो सप्त भयों का नाश हुआ है, और यहाँ इनकी स्थिरता इतनी है तो चारित्र की अपेक्षा भी दृढ़ है और किसी चीज का उन्हें भय नहीं रहा, इसलिए ऐसे शिव सुख के मार्ग में स्थित एवं भय से रहित ऐसे सर्व साधु जयवंत हो। ये मंगलाचरण के बाद अभी यहाँ ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। ये आप प्रस्तावना पढ़कर आना कल, अगर नहीं पढ़ी हो तो, मेरे ख्याल से भी नया पुस्तक है इसलिए पढ़ी ही होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो पढ़ लेना, क्योंकि इसके बारे में पहले पुस्तक में भी उसकी प्रस्तावना में कौन कौन से पुस्तक में कौन सा विषय है और ये जो कृति अनुयोग द्वार है वो कौन से विषय से निकला हुआ है, मूल श्रुत धारा कहाँ से आई है, इसका हमने बहुत विस्तार से विवेचन पहले भाग में भी देखा था, वो फिर दोबारा पढ़ लेंगे, अभी उसको बहुत दिन हुए ना पहला भाग, अभी कभी हमने नवंबर 2003 में शुरू किया था तभी पढ़ा था, तो अभी थोड़ा, हाँ 21 नवंबर, तभी उसको भी पढ़ लेना, अभी हम यहाँ आगे पढ़ते हैं, इसकी भी प्रस्तावना कल पढ़ लेना, पढ़कर आना, और अब हम यहाँ पढ़ेंगे आगे। पहला सूत्र पढ़ते हैं, नमो जिनानम, जिनों को नमस्कार हो, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार हो, ऐसी यहाँ बात करते हैं। शंका, यह सूत्र किस लिए कहा जाता है, उसका समाधान, यह मंगल के लिए कहा जाता है। ग्रंथ के आदि में मंगल करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, उसकी भी मंगल क्यों करना, कितने प्रकार के मंगल होते हैं आदि भी हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है पहले बार में। फिर शंका, मंगल क्या है, उसका समाधान, पूर्व संचित कर्मों के विनाश का नाम मंगल है। मंगल शब्द कैसे तैयार हुआ है, मंगम लाती, यानी सुख को जो प्राप्त कराता है वो मंगम लाती, या मम गालयती, मम यानी पाप को जो गलावे उसको मंगल कहते हैं, जो सुख की प्राप्ति करावे और पाप को गलावे उसका नाम है मंगल। शंका, यदि ऐसा है तो जिन सूत्रों का अर्थ, जो जिन भगवान के मुख से निकला हुआ अर्थ है, जिन सूत्र ने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए हुए सूत्र, तो उसका जो अर्थ है जो विसंवाद रहित होने के कारण केवल ज्ञान के समान है, उसमें कोई विरोध नहीं है, कोई विसंवाद नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो केवल ज्ञान के समान है, क्योंकि केवलियों ने जो जाना है वैसा ही उनकी वाणी में आया है। तो केवल ज्ञान सबको जैसा है वैसा जानता है, तो उनकी वाणी भी जो तत्व जो अर्थ जैसे है वैसे बताते हैं, इसलिए उनकी वाणी में भी कहीं कोई विसंवाद नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, कोई कहीं विरोध नहीं है। तथा ये शंका करके शंका चल रही है भी, तथा वृषभ सेनादि गणधर देवों द्वारा, ये वृषभ सेन गणधर कौन से भगवान के गणधर थे, प्रेरणा बेन आपको मालूम है, बोलो। वृषभ देव भगवान यानी आदिनाथ भगवान के ये गणधर, वृषभ से आदि आदि है ने? हा? राजा ऋषभ राजा के तो ये पुत्र थे, उनके पुत्र बहुत सारे गणधर भी हो गए, सारे मुनि होके गए थे ना, तो उसमें से ये वृषभ से है। तो आदि में सभी तीर्थंकरों के सभी गणधरों को ले ले, तो वृषभ नहीं, वृषभ सेन उनका नाम है,
वृषभ सेन बेटे का नाम। सितंबर परंपरा में पुंडरीक स्वामी गणधर माने जाते
पहले वृषभ देव के,
नहीं वृषभ देव के अगर आप पालीताना में जाओ तो पालीताना में आदिश्वर भगवान का जो मंदिर है उसके सामने पुंडरीक स्वामी का।
अच्छा, उसका दूसरा नाम उनके पास होगा कोई, तो ये हाँ हमें पता नहीं, तो वहीं से वो पुंडरीक वरदा हारी विठ्ठल आ गया होगा, कुंडलिक ये पुंडरीक। तथा वृषभ सेनादि गणधर देव, कभी सुना नहीं कभी ये नाम,
आदि लिखा
गणधर तो बहुत
आगे,
प्रत्येक तीर्थंकर के कितने गणधर थे, कितने क्या थे, उपाध्याय कितने, साधु कितने, मनपरे ज्ञानी, वो सारा आता है ना, एक गणधर वाले नाम की पूजा थी, उस विधान में प्रत्येक तीर्थंकर के गणधर कौन कौन से थे या क्या क्या थे, कितने थे, उनकी संख्या आदि सब विस्तार से चर्चा थी। तो वृषभ सेनादि गणधर देवों द्वारा जिनकी शब्द रचना की गई है, देखो तीर्थंकर जो है वो तो केवल ज्ञानी है और उनकी दिव्य ध्वनि छूटती है, तो केवल ज्ञान में जो जाना है वो तो उसमें आता है, और उसको सुनकर ये जो गणधर देव है वो शब्द रचना करते, ऐसे सब सूत्रों से उनके पढ़ने और मनन करने रूप क्रिया में प्रवृत्त हुए सब जीवों के प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी से पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए यह जिन नमस्कारात्मक सूत्र व्यर्थ पड़ता है, क्या कहना चाहते हैं, ये हम पुस्तक में क्या पढ़ रहे हैं, सूत्रों को पढ़ेंगे, तो ये सूत्र कहाँ से आए हैं, आचार्यों की परंपरा से आए, आचार्यों की परंपरा कहाँ से शुरू हुई है, तो गणधरों ने इसकी रचना की, तो गणधरों ने कहाँ से जाना, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया तो कहाँ से, तो उन्होंने केवल ज्ञान से जो जाना वही उनकी वाणी में आया। इसलिए जो ये सूत्रों को पढ़ता है तो ये पढ़ने मात्र से ही प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी से निर्जरा होती है कर्मों की, फिर अलग से फिर दोबारा जिन उनको नमस्कार क्यों किया? प्रश्न ख्याल में है ना? शंका करके शंका ऐसी है। अथवा यदि यह सूत्र सफल है तो जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करने से पूर्व संचित कर्मों का नाश होता होगा तो सूत्रों का अध्ययन करके व्यर्थ हो जाएगा, फिर सूत्र पढ़ने की क्या जरूरत है? जिनेन्द्र के नमस्कार से ही यदि वो काम होता है, हम कहते हैं क्या फायदा फिर? सबको ये पढ़िए ना, तो चलो शॉर्टकट आ गए जिनेन्द्र के भगवान को, यानी जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करने से ही। यहाँ लिखा ना मंगल क्यों करना, तो पूर्व कर्मों के विनाश के लिए करना है, तो ये काम हो जाएगा, तो फिर अध्ययन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सूत्र के अध्ययन से होने वाला कर्म क्षय इन जिन नमस्कारात्मक सूत्र में ही हो जाता है। शंका घर की शंका ख्याल में आई? नमस्कार करने से ही कर्मों का क्षय हो जाएगा, और सूत्रों का भी काम क्या है, उनसे भी पढ़ने से कर्मों का क्षय ही होना है, तो ये कार्य यहाँ इसमें ही निपट गया, तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सूत्राध्ययन से यानी सूत्र के अध्ययन से, सूत्र को समझने से, उसका अर्थ ख्याल में लेने से, उसको याद करने से, तो सामान्य से कर्मों की निर्जरा की जाती है, उसमें सामान्य से निर्जरा होती है, किंतु इस मंगल से सूत्राध्ययन में विघ्न करने वाले कर्मों का विनाश किया जाता है। जैसे हम कहते हैं अंतराय कर्म आड़ा आ गया, जो नाम खाली सुना है ना, बाकी कुछ नहीं जानते, तो सूत्र के अध्ययन में विघ्न लाने वाले ऐसे जो कर्म है उनका विनाश किया जाता है। इस प्रकार दोनों का विषय भिन्न है। फिर शंका, चूंकि सूत्राध्ययन में विघ्न उत्पन्न करने वाले कर्मों का विनाश सामान्य कर्मों के विरोधी सूत्राभ्यास से ही हो जाता है, अतएव मंगल सूत्र का आरंभ करना व्यर्थ क्यों न होगा? कहते मंगलाचरण करने की जरूरत ही क्या है, सूत्राध्ययन करने लगे तो सामान्य से कर्मों का तो विनाश हो ही जाता है, तो उसमें भी वो रुकावट डालने वाले कर्म भी या विघ्न उत्पन्न करने वाले कर्म भी उसमें आ ही गए, उसका भी विनाश हो ही जाएगा, तो मंगल अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसको मंगल के लिए जो सूत्र बताया ना, वो मंगल सूत्र है, हमें गले में पहनते वो मंगल सूत्र की बात नहीं। वो सूत्र है ना धागा, मंगल रूप धागा, अभी पहले तो काला धागा होगा ऐसा कुछ होगा, अभी तो फिर उसको फिर उसमें डिजाइन आ गए, उसको सोना उसमें मढ़ दिया, सारा हीरे माणिक मोती जो कुछ मढ़ना है, मंगल सूत्र बता दिया। समाधान, ऐसा नहीं है, क्योंकि सूत्रार्थ के ज्ञान और अभ्यास में विघ्न उत्पन्न करने वाले कर्मों का जब तक विनाश न होगा तब तक उसका ज्ञान और अभ्यास दोनों असंभव है। देखो हमने पहले भी देखा था, जो ये धर्मानुराग रूप वृत्ति होती है, जिनेन्द्र भगवान का नमस्कार करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो क्या होता है, वो प्रशस्त कर्म घटते हैं, उसका अनुभव घटते हैं, और घटकर उदय में आता है। एक ज्ञानावरणादि का भी अनुभव घटेगा तो क्या होगा, ज्ञान खुलेगा ना, तो ये ज्ञान और अभ्यास में विघ्न, ज्ञान में विघ्न कौन सा है, ज्ञानावरण का है, भले सूत्र सुनेंगे परंतु वो समझने में तो आने चाहिए, बुद्धि में उसका ग्रहण तो होना चाहिए, और मन लगे विषय कषायों में और सूत्रों का अर्थ ख्याल में आवे, ऐसी तो बात नहीं बन सकती। तो जिनेन्द्र भगवान का हम स्मरण करते हैं, नाम लेना है, स्मरण पूर्वक उनके स्वरूप को भी जानना है, तब अपनी कषाय भी मंद हो जाते हैं और ज्ञानावरणादि का भी अनुभव घटते चला जाता है। तो ज्ञान और अभ्यास दोनों ही अभ्यास है, वो बारम्बार उसका जो कुछ चिंतन मनन जो है उसमें विघ्न उत्पन्न करने वाले कर्मों का विनाश हो जाता है, और जब तक ऐसा विनाश नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान और अभ्यास दोनों असंभव है। और कारण से पूर्व काल में कार्य होता नहीं है, क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। ये कारण बताए, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके जो मंगल किया है वो कारण है, और उसके कारण इन कर्मों का नाश हुआ है या उसका जो कुछ अनुभव घटना है जो कुछ है, तो ये कारण से कार्य की उत्पत्ति होती हुई दिखाई जाती है। कारण के पहले ही पूर्व में ही कार्य नहीं देखा जाता, ये बात यहाँ बताई जाती है। फिर शंका, यदि जिनेन्द्र नमस्कार केवल सूत्राध्ययन में विघ्न करने वाले कर्म मात्र का विनाशक है तो उसे मरण समय में नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं? शंका कर की शंका क्या है भैया, आप मरण के समय भी भगवान का नाम लेते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि वो मात्र क्या करता है, सूत्र के अध्ययन में, सूत्र के ज्ञान और अभ्यास में विघ्न करने वाले कर्मों का ही नाश करता है, मरण को तो टालता नहीं है, क्योंकि उसका उस समय में कोई फल नहीं है। मरण के समय में अगर जिनेन्द्र भगवान का नाम लेते हैं तो उस समय उसका कोई फल देखा नहीं जाता है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो तो मरण के समय में उनका नाम क्यों लेते हैं? उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वह केवल यानी मात्र सिर्फ सूत्राध्ययन में विघ्न करने वाले कर्मों का ही विनाश करता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ध्यान हुए ना, ध्यान करना, सूत्र अध्ययन, सूत्र का अध्ययन, यानी मात्र उतने ही कर्मों का नाश होता है, ऐसा नहीं, अन्य भी कर्मों का नाश होता है। शंका, तो फिर यह जिनेन्द्र नमस्कार एक ही होकर अनेक कार्यों का करने वाला कैसे होता है? यानी है तो जिनेन्द्र का नमस्कार और वो सूत्र में अध्ययन करने वाले कर्म उसमें विघ्न उत्पन्न करने वाले कर्मों का भी नाश करे और अन्य कर्मों का भी नाश करे, एक ही कारण और अनेक कार्य, ऐसे कैसे हो सकता है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि अनेक प्रकार के ज्ञान व चारित्र की सहायता युक्त होते हुए उसके अनेक कार्यों के उत्पादन में कोई विरोध नहीं है। क्या कहते हैं, ये किसमें सहायता है, ये किसमें निमित्त हो रहा है? अनेक प्रकार का ज्ञान और चारित्र इसमें निमित्त है, इसमें सहायता होते हुए भी, सहायता युक्त होते हुए उसके अनेक कार्यों के उत्पादन में कोई विरोध नहीं है, यानी वो अनेक प्रकार का कार्य देखने में आता है। इसके कारण कहा भी है, ये मूलाचार्य टीका था, यहाँ उद्धृत की है, एसो पंचणमोकारो सौ वक्पा वक्पणासो मंगलेषु सर्वेषु परमं भोति मंगलम्। ये तो हम तो हमेशा पढ़ते हैं। यह पंच नमस्कार मंत्र सर्व पापों का नाश करने वाला और सब मंगलों में प्रथम मंगल है। मंगलों में भी सबसे पहला मंगल कौन सा है? हम नमोकार मंत्र जो हम कहते पंच परमेश्वरों को नमस्कार करते हैं, ऐसो पंच नमो यारो, हम हमेशा कहते हैं ना, नमोकारों की नमस्कार जिसको कहते हैं, पांच नमस्कार जो है सर्व पापों का नाश करने वाला। तो अच्छा हुआ ना, 24 घंटे में हम तो रात दिन क्या कर रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं, और 5 मिनट में नमोकार मंत्र पढ़ लेंगे तो सभी पापों का नाश हो जाएगा, तो अच्छा है, ये आपका मंत्र बहुत ही अच्छा है। हा? तो ऐसा नहीं है, सब पापों का नाश करता है, उसका अर्थ है जब हम नमस्कार मंत्र पढ़ते हैं, पंच परमेष्ठी के गुणों का स्मरण करते हैं, उस काल में कोई पाप उत्पन्न नहीं हो रहा है, वो पाप के उत्पन्न नहीं होने को वहां सर्व पापों का नाश करता है, ऐसा कहने में आता है। नहीं तो जीवों की मान्यता ऐसी है कि कुछ भी करो, अभी कोई संकट आए तो चलो नमस्कार मंत्र बोल दो तो अपना संकट भी टल जाएगा। हाँ ऐसा ही है ना, कभी याद नहीं आता, उन संकट के काल में तो एकदम याद आ जाते हैं। और सब मंगलों में प्रथम मंगल है, ये मंगल की बात होंगी, मंगल का अर्थ हमने अभी देखा था, जो सुख को लाता है पाप को गलाता है, क्योंकि
हाँ
हम भी ऐसे बोलते मंगलानंच सवेसिम परमम हवायु मंगलम। अब ये अलग अलग जो ग्रंथों में अलग अलग पद्धति से उद्धृत किया है, प्राकृत है ना, तो नहीं नहीं प्राकृत ही है ना, परमम हवायु मंगलम प्राकृत ही है। और ऊपर की भी लाइन हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासन सनो,
हाँ
नमोकार, वो नमोकारो भी करते हैं कोई को। तो ये तो प्राकृत भाषा है, ये मूलाचार में ऐसा लिखा, अर्थ वैसा ही है ना। मंगलानंच सर्वेशिम कहो या मंगलेशु सर्वेशु, सभी मंगलों में ये प्रथम मंगल है। और यह अकेला ही सब कर्मों का क्षय करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर ज्ञान और चारित्र के अभ्यास की विफलता का प्रसंग आवेगा। क्या कहते हैं, नमोकार मंत्र बता कह दो बस और कर्मों का क्षय हो जाएगा, क्यों? तो मुनि दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं, अंतरंग में स्थिरता की भी जरूरत नहीं, ये स्वाध्याय करने की भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस नमोकार मंत्र रात दिन पढ़ते रहो और कर्मों का क्षय हो जाएगा। तो क्या कहते, अकेला ही सब कर्मों का क्षय करने में समर्थ नहीं है, और ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर ज्ञान और चारित्र के अभ्यास की विफलता का प्रसंग है। ज्ञान का अभ्यास है ना, अपने ज्ञान स्वरूप का जो पहले निर्णय करना है, पहले तो शास्त्र को पढ़कर फिर अपने आत्मा का भी ज्ञान करना है, वो ज्ञान, और चारित्र का अभ्यास है ना, चारित्र की प्रैक्टिस बारंबार, स्वरूप में स्थिरता। अभ्यास का क्या होता है अर्थ, सराव, उसकी जो बारंबार उसको करना, उसको कहते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं। अभी अंग्रेजी से हम नजदीक गए ना, तो अपनी भाषा से दूर होते हैं, उसको समझाने के लिए अंग्रेजी शब्द भी सुनने पड़ते हैं। इस कारण सब कार्यों के आरंभ में जिनेंद्र नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा किए बिना प्रारंभ किए हुए कार्य की सिद्धि घटित नहीं होती। कहा भी है, हम भी परीक्षा में पहले नमोकार मंत्र पढ़कर ही परीक्षा लेते बचपन से आदत जो पड़ी थी और ऐसी आदत थी, यानी कोई कार्य नहीं है, नहीं उससे कुछ कार्य होगा ऐसी नहीं, परंतु एक ऐसे नमोकार मंत्र, कुछ खाली बैठे तो बस मन में नमोकार मंत्र का ही रटन पूरे 24 घंटे में, जो कुछ ऐसे ही ऐसी आदत सी हो गई, परंतु अभी उसका जो मर्म है, उसके जो जो भगवान की या पंच परमेश्वर की जो महानता अभिभाषित होती है, वैसे वहां कभी बस ये कोई श्रेष्ठ है, थोड़ा थोड़ा कुछ मालूम था, पूरा तो कहां मालूम था। कहा भी है, देखो अभी और दूसरी गाथा यहाँ षटखंडागम पुस्तक एक की यहाँ फिर गाथा बताते हैं, वहां अलग से है, यहाँ कुछ अलग भाषा में है। आदि मंगल करणम शिष्या लघु पारया हवंतुति मध्ये औवोचित्ति विद्या विद्या फलम चरिमे। हमने देखा ना, ग्रंथ के आदि में मंगल होता है, मध्य में होता है, अंत में होता है, तो उसका फल बता रहे। शास्त्र के आदि में मंगल इसलिए किया जाता है कि शिष्य, वो शिप्य हुआ शिष्य, शीघ्र ही शास्त्र के पारगामी हो, पारगामी हो यानी ज्ञाता हो, जानने वाले हो जाए, पूरा शास्त्र वे पढ़े। पारगामी हो यानी उसमें पारगामी होना यानी उसमें जानकार होना, पारंगत भी कहते ना, एक्सपर्ट हो। देखो शास्त्र के आदि में मंगल इसलिए किया जाता है कि शिष्य शीघ्र ही शास्त्र के पारगामी हो। मध्य में मंगल करने से शास्त्र के स्वाध्याय आदि की विच्छित्ति नहीं होती, कोई बीच में स्वाध्याय छोड़ नहीं देता, और अंत में उसके करने से यानी मंगल करने से विद्या व विद्या के फल की प्राप्ति होती है। जो कुछ पढ़ा है उसके फल की प्राप्ति होती है, इसलिए वो आदि में भी मंगल करते हैं, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करते हैं, बीच में भी करेंगे और फिर अंत में भी करेंगे। हम भी डेली जो हम प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं ना, फिर टाइम पास क्यों करते हो, ऐसा लगता है ना लोगों को, जल्दी जल्दी विषय शुरू कर दो। तो रोज के लिए वो हमारा आदि मंगल है और अंत में भी हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। ये पद्धति के लिए नहीं करना है, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा हमें ये उपलब्ध हुआ है मार्ग, तो उनका ज्ञान कैसे होगा, तो उनके जो गुण है उसको याद करके उनको नमस्कार करें। फिर शंका, मंगल करके प्रारंभ किए गए कार्यों के कहीं पर विघ्न पाए जाने से और उसे न करके प्रारंभ किए कार्यों के भी कहीं पर भी विघ्नों का अभाव देखे जाने से जिनेन्द्र नमस्कार विघ्न विनाशक नहीं है, क्या कहते हैं? ग्रंथ के आदि में मंगल करते हैं तो भी कहीं कहीं उसमें बीच में ही विघ्न देखा जाता है। जैसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा तो उसमें भी आदि में मंगल तो किया ही था, फिर ग्रंथ तो पूरा न हो सका, बीच में ही महाभयानक विघ्न आ गए ना उनके, तो उनके कोई राजा से कोई किसी ने खोटी शिकायत भी कर दी, उनको हाथी के पैर के नीचे पिटवाया, तो ग्रंथ अधूरा रह गया उनका। तो ऐसा भी देखने में आता है, पहले मंगल करने पर भी कहीं पर विघ्न देखा जाता है, और कोई कोई ऐसे देखते कि कोई मंगल किया ही नहीं है और फिर भी विघ्न नहीं आया। जैसे अभी विषय कषाय देखिए, कोई भी आप स्टोरी बुक ले, वहां कहां मंगलाचरण होता है, हाँ वो कार्य उनका निर्विघ्न हो जाता है, किसका? विषय कषाय का। विघ्नों का अभाव देखे जाने से जिनेन्द्र नमस्कार विघ्न विनाशक तो नहीं है, उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिन व्याधियों की औषधि की गई है उनका अविनाश और जिनकी औषधि नहीं की गई है उनका विनाश देखे जाने से जिसने व्यभिचार जान लिया है ऐसे जीव के भी मारिच यानी काली मिर्च यानी मिरी जिसको हम कहते आदि औषधि द्रव्यों में औषधित्व गुण पाया जाता है। क्या कहते हैं? ऐसी कोई बीमारी है, देखो यह कोई दोष नहीं कहते, जिन व्याधियों की औषधि की गई है उसका अविनाश, यानी कोई बीमारी है और औषध देने पर भी अविनाश, अविनाश यानी रोग का विनाश नहीं होना, ऐसे भी कोई रोग है कि औषधि देने पर भी वो रोग नष्ट नहीं होते, और जिनकी औषधि नहीं की उनका भी विनाश देखे जाने से, कभी कभी बीमारी हो जाती है और हम दवा कुछ नहीं करते फिर भी वो तो अपने काल में वो ठीक भी हो जाती है, ऐसे भी है ना, सर्दी है इवन जॉन्डिस है कोई, वो सेल्फ लिमिटेड उसका कुछ चलता रहता है काल में, ऐसा भी देखा जाता है। जाने से जिसने व्यभिचार जान लिया है यानी वहां भी उसने ऐसा तो जान ही लिया, कभी कभी दवाइयों से भी बीमारी ठीक नहीं होती ये भी जाना है, और कभी कभी बिना दवाइयों के भी बीमारी ठीक होते हुए ये जो व्यभिचार है ये जो विरोधीपना है ये तो लौकिक में भी जान लिया है, फिर भी ऐसे जीव के भी मारिच आदि औषधि द्रव्यों में औषधित्व गुण पाया जाता है, वो भी दवा लेना छोड़ देता है क्या? तो काली मिर्च आदि जो औषधियां हैं वो उसके लिए भी कार्यकारी है, उसका भी वो यूज करता है, उसका भी इस्तेमाल कर देता है। कोई बीमारी से अभी हमें मालूम है कितने कैंसर पेशेंट वो ठीक नहीं होते, तो मान लेते हमें कैंसर होगा तो हम घर में बैठेंगे क्या कहें? पहले में पहले दौड़ेंगे, क्योंकि ऐसा व्यभिचार होते हुए भी उसका इलाज किए बिना तो रुकते नहीं हम, वैसे यहां समझ लेना चाहिए। यदि कहा जाए कि औषधियों का औषधित्व उनके सर्वत्र अचूक न होने पर भी इस कारण नष्ट नहीं होता क्योंकि असाध्य व्याधियों को छोड़ केवल साध्य व्याधियों के विषय में ही उनका व्यापार माना गया है। क्या कहते हैं, अभी शंकाकार पूछे उसके पहले आचार्य अपनी ओर से बताए कि यदि कोई ऐसा कहते हैं कि औषधियों में जो औषधित्व है, जैसे काली मिरी का उन्होंने उदाहरण दिया यहाँ काली मिर्च का, तो उसमें जो औषधिपना है वो सभी जगह वो अचूक नहीं है ना, वो हर एक बीमारी के लिए कार्य करे ही ऐसी बात नहीं है, परंतु उसका औषधिपना नष्ट नहीं होता। जैसे वो लिंडी पीपर आती है ना पिंपड़ी, इसको हमको उसमें भी उसका औषधिपना है, हर एक चीज में उसका अपना अपना जो कुछ गुण है औषधिपना, वो नष्ट तो नहीं होता है। क्योंकि असाध्य व्याधि यानी जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती उसको कहते हैं असाध्य रोग या असाध्य व्याधि। तो असाध्य जो रोग है बीमारियां उनको छोड़ करके केवल साध्य व्याधियां यानी अन्य कोई जो ठीक होने वाली जो बीमारियां हैं उनके विषय में ही उनका व्यापार माना गया है, उन्हीं में वो औषधि रूप से कार्य करती है ऐसा माना गया है। ऐसा यदि कोई कहता है तो, और तो जिनेन्द्र नमस्कार भी उसी प्रकार विघ्न विनाशक माना जा सकता है, क्योंकि उसका भी व्यापार असाध्य विघ्नों के कारणभूत कर्मों को छोड़कर साध्य विघ्नों से उत्पन्न कर्मों के विनाश में देखा जाता है। ऐसे कोई कर्म हो गए तो ये जो टाल ही नहीं सकते है जिसको असाध्य कहा, तो भले वो कर्म दूर न भी हो जावे, परंतु जैसे कोई बीमारियां सामान्य बीमारियां ठीक हो जाती है दवाई से, वैसे जो अन्य अन्य जो सामान्य कर्म है उनका तो विनाश देखा ही जाता है, यानी वो बिल्कुल कार्यकारी नहीं ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। ख्याल है ना क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि औषध के समान जिनेन्द्र नमस्कार नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार निर्विघ्न अग्नि के होते हुए न जल सकने योग्य ईंधनों के समान ज्ञान व ध्यान की सहायता युक्त उक्त नमस्कार के होने पर असाध्य विघ्नोत्पादक कर्मों का भी अभाव होता है। क्या कहते हैं, औषध कभी लागू होता है बीमारी पर, कभी नहीं भी होता, परंतु जिनेन्द्र नमस्कार वैसा नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, जिस प्रकार निर्विघ्न अग्नि के होते हुए न जल सकने योग्य ईंधनों के समान, जो ईंधन हाँ जल नहीं सकते ऐसे ईंधनों के समान, अभी वहां ये तो उदाहरण हुआ, जिनेन्द्र नमस्कार से क्या होता है, ज्ञान व ध्यान की सहायता युक्त, ये नमस्कार जो है जिनेन्द्र भगवान का नमस्कार वो ज्ञान में और ध्यान में सहायक है। देखिए मुनिराज भी ध्यान, अभी वे तो तीन कषाय के अभाव पूर्वक है, उनका तो इतना चारित्र का अभ्यास है, तो कितने वो ध्यान सहजता से होता होगा उनका, फिर भी उनके सामायिक आदि जो कुछ क्रियाएं उसके सबसे शुरू में भगवान को नमस्कार करते, आसन लगाकर बैठेंगे चारों ओर नमस्कार करके फिर वो शुरू करें, उनकी दैनिक क्रियाएं सुबह से शाम तक देखेंगे तो उसमें भी कितनी बार वो अरिहंतों की भक्ति होगी, सिद्धों की भक्ति, वो शुद्ध भक्ति वगैरह आदि उनके डेली उनका नित्य क्रम जो है उसमें वो समाविष्ट हो। ऐसा नहीं कहते कि मैं तो अभी स्वयं पंच परमेष्ठी पद में हूं, अब मुझे अन्यों को नमस्कार करने की क्या जरूरत है, ऐसी बात नहीं। तो यहाँ के कहते ज्ञान व ध्यान की सहायता युक्त होने से, नमस्कार किया इसलिए ध्यान होता है ये बात नहीं है, तो उक्त नमस्कार के होने पर असाध्य विघ्नोत्पादक कर्मों का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि ज्ञान और ध्यान भी कर रहे हैं ना साथ साथ, तो उसमें ये भी निमित्त है जिनेन्द्र का नमस्कार, तो असाध्य जो विघ्न है उसको उत्पन्न करने वाले कर्मों का भी अभाव देखा जाता है। ज्ञान ध्यानात्मक नमस्कार को, ये नमस्कार कौन सा, ज्ञान और ध्यानात्मक नमस्कार, उसको नमस्कार क्या, जिसको सच्ची भक्ति भी कहे कहते ना, स्तुति, निश्चय स्तुति कहा है समय सार। यहाँ ज्ञान ध्यानात्मक नमस्कार कहा है, बाह्य हाथ जोड़कर सिर नवाना जमीन पर टेकना ये नमस्कार नहीं है। जिनेन्द्र भगवान का जैसा स्वरूप है ऐसा मेरा भी स्वरूप है, उसका ज्ञान करना, उसमें स्थिरता करना, ध्यान करना अपने स्वरूप का, वही नमस्कार है सच्चा। तो ज्ञान ध्यानात्मक नमस्कार को संपूर्ण अर्थात उत्कृष्ट एवं मंद श्रद्धान युक्त नमस्कार को जघन्य जानना चाहिए। ये मंद श्रद्धान युक्त है ना, ये सम्य दृष्टि की बात चलेगी। श्रद्धान है ना उसके भी, और बिना श्रद्धान वाले को वो तो व्यवहार से भी नहीं कहेंगे उसको। शेष असंख्यात लोक प्रमाण भेदों से भिन्न नमस्कार मध्यम है। कितने नमस्कार बताए? असंख्यात लोक प्रमाण नमस्कार। अभी जीवों के जितने परिणाम होंगे उतने अलग अलग नमस्कार भी कहेंगे। तो यदि कर्मों का उत्कृष्ट पद्धति से नाश करना चाहते हैं, तो ये उत्कृष्ट नमस्कार करेंगे तो ही। जब बात आती है कि जिनेन्द्र का नमस्कार करने से, जिनेन्द्र भगवान के नमस्कार से कर्मों का नाश होता है, तो हमें उस पर श्रद्धा नहीं होती। हमें ऐसा लगता है हम तो रोज करते हैं, तो कहाँ हमारे कर्मों का विनाश हो। रोज हम नए बांधते और पुराने जाएंगे, उसमें क्या। तो जिनेन्द्र का नमस्कार ये तो राग है, उससे कर्मों का कैसे नाश होगा। उस राग वाले नमस्कार की बात नहीं है यहाँ। ज्ञान और ध्यानात्मक जो नमस्कार है उस नमस्कार से कर्मों की निर्जरा होती है। ये उसी को उत्कृष्ट नमस्कार किया कहा है, ज्ञान ध्यानात्मक नमस्कार, यही उत्कृष्ट है, उसी से कर्मों की निर्जरा होती है। अब आगे पढ़ते भी हम, और वे सब समान फल वाले नहीं होते। अभी अलग अलग प्रकार के नमस्कार है तो उसके फल भी अलग अलग हो गए। उत्कृष्ट फल चाहते हैं तो ये उत्कृष्ट नमस्कार करना सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानने पर अति प्रसंग दोष आता है। इस कारण यहाँ पूर्वोक्त दोषों की संभावना नहीं है यह सिद्ध हुआ। अथवा अब दूसरी पद्धति से यहाँ बात बताते, मोक्ष के निमित्त सूत्रों का अभ्यास किया जाता है। क्यों करना, सूत्र क्यों पढ़ना, हमें मोक्ष चाहिए, अनंत सुख की हम चाहना है हमें। मोक्ष भी कर्मों की निर्जरा से होता है। वह कर्म निर्जरा भी ज्ञान के अविनाभावी ध्यान और चिंतन से होती है। देखो पूरा ही मोक्ष मार्ग और कैसे कैसे क्या होता है वो सारा यहाँ बताया। मोक्ष कैसे होता है, कर्मों की निर्जरा से। और कर्मों की निर्जरा कैसे होगी, ध्यान और चिंतन से। ध्यान से होगी ना, तो ध्यान कैसा है, ज्ञान का अविनाभावी है। अविनाभावी है ने वो उसके बिना नहीं, वो उसके बिना नहीं, उसको कहते हैं अविनाभावी। ये ज्ञान कौन से, ये शास्त्र के ज्ञान की बात नहीं है। निज शुद्धात्मा का ज्ञान करना और उसी को जानते रहना, वही तो ध्यान है। तो ऐसे ध्यान से और चिंतन से कर्म की निर्जरा होती है। ज्ञान के अविनाभावी ध्यान और चिंतन भी सम्यक्त्व से होते हैं। ये स्थिरता जो है, अंदर एकाग्रता है, वो सम्यक्त्व है ना क्या। ये जो शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है उस पर बिल्कुल निशंक ऐसी जो श्रद्धा है, रुचि है उसकी, उसी को सम्यक्त्व कहा है। अपनी पहचान है, अपन पहचानने मात्र से काम नहीं चलेगा, पहचान कर उसमें स्थिर होना चाहिए, जो ध्यान की जो मुख्यता बताई। तो ज्ञान के अविनाभावी ध्यान और चिंतन भी सम्यक्त्व से होते हैं। सम्यक्त्व से रहित ज्ञान ध्यान के, ये देखो कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसे सम्यक्त्व नहीं है, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं है, अपनी आत्मा की पहचान नहीं है, सम्यक्त्व से रहित ज्ञान ध्यान के असंख्यात गुणे श्रेणी रूप कर्म निर्जरा के कारण न होने से, क्या कहा, जिसे सम्यक्त्व नहीं है ऐसा जीव ज्ञान यानी शास्त्रों का ज्ञान करता रहे और ध्यान में यानी कहीं पर अपना उपयोग टिकाए रखे तो उससे असंख्यात गुणी जो निर्जरा का कार्य नहीं देखने में आता उसकी कर्म निर्जरा नहीं होती। इसलिए ज्ञान ध्यान यह संज्ञा वास्तविक नहीं है क्योंकि अर्थ श्रद्धान से रहित ज्ञान और मोक्षार्थ न किए जाने वाले उद्यम में वह संज्ञा स्वीकार करने पर अति प्रसंग होता है। अर्थ श्रद्धा यानी पदार्थ श्रद्धा, अपना और पर का भी श्रद्धा, नहीं तो केवल अपना ही श्रद्धा नहीं और पर पदार्थ दुनिया में है कि नहीं अपने को मालूम नहीं वो बात नहीं है, क्योंकि अपना श्रद्धा नहीं तो मैं तो ज्ञाता स्वभाव ही हूँ, तो ज्ञाता है तो सब कुछ जानने का मेरा स्वभाव, यानी अपने को जानने में स्व की और पर की भी सिद्धि हो जाती है क्योंकि इन सबको जानने वाला ही तो मैं हूँ, मैं कैसा हूँ तो जानने वाला। तो ये तो अर्थ श्रद्धान से रहित तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक् दर्शनम का, जिसको तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं है, तत्व का और अर्थ का श्रद्धान नहीं है, ऐसे जीव का जो ज्ञान है और जो कुछ उद्यम कर रहा है, कैसा उद्यम, मोक्षार्थ न किए जाने वाले उद्यम, मोक्षार्थ यानी मोक्ष के लिए, जो मोक्ष के लिए नहीं किया जा रहा है उद्यम, ऐसे ज्ञान और ये उल्टे उपक्रम से उल्टा चल रहे हैं उद्यम, नाम तो ये ज्ञान और ध्यान, ये ऐसे ध्यान से काम नहीं चलेगा। हम भी किसी ना किसी का ध्यान तो करते, कोई अभी टीवी भी देखते तो कितना ध्यान पूर्वक देखते, वहां भी ध्यान चल ही रहे, उसी को ध्यान रहे, बच्चे भी कितना, कोई उनकी इंटरेस्टिंग बात हो गई इंटरेस्ट तो उसमें कितना ध्यान लगाते, माँ भी बच्चे का कितना ख्याल ध्यान रखती है, तो वो उस कोई अन्य किसी ध्यान की यहाँ बात है, नहीं तो और आर्द्र रौद्र ध्यान को भी ध्यान कहना पड़ेगा, कहते भी है परंतु उस ध्यान की यहाँ बात नहीं है। ये ज्ञान ध्यान कौन सा सम्यक्त्व सहित वाला चाहिए, इसलिए कहते अर्थ श्रद्धान से रहित यानी सम्यक्त्व बिना का ज्ञान और जो मोक्ष के लिए नहीं किया जा रहा है ऐसा उद्यम में वह संज्ञा स्वीकार करने पर, यानी उसको भी ज्ञान और ध्यान ऐसा अगर हम कहते हैं, उसका भी नाम ज्ञान ध्यान रख दिया हमने, तो क्या होगा, अति प्रसंग दोष आएगा, अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा, ये भी ध्यान और वो भी ध्यान। इसीलिए सम्यक दृष्टियों को ही सूत्र का व्याख्यान करना चाहिए, इस बात के ज्ञापनार्थ जिन्हें नमस्कार किया गया है। कितने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये सारी बातें बताई, अब आगे बढ़ते हैं। अप्रकृत का निवारण करते हुए, प्रकृति ने जो हम विषय चल रहा है उसको कहते हैं प्रकृत, और जो अभी विवक्षित विषय नहीं है उसको कहते हैं अप्रकृत। तो अप्रकृत का निवारण करते हुए प्रकृत अर्थ के प्ररूपणार्थ निक्षेप किया जाता है। हमें कोई बात समझनी है, किसी विषय को समझना है, किसी चीज को समझना है, तो उसमें हम निक्षेप करते हैं। हमने देखे ना, कुछ याद है कोई निक्षेप, नाम स्थापना द्रव्य भाव, ये चार तो है ही है, पहले तो हमें छह भी देखे थे, क्षेत्र वगैरह भी उसमें देखा ना था। तो ये जो है निक्षेप, तो वो क्यों, क्योंकि हम विशिष्ट पद्धति से उसको जानना है इसलिए उसमें वो निक्षेप किए जाते हैं। वह इस प्रकार है, नाम स्थापना द्रव्य और भाव के भेद से जिन चार प्रकार में है, जिन शब्द है ना, नमो जिनानम सूत्र आया है, तो जिन शब्द है उसके भी निक्षेप बता रहे। जिन शब्द नाम जिन है, क्योंकि जिन नाम तो हम बच्चे का भी रख सकते हैं, तो ये जो जिन है वो नाम जी मैम, मैंने नाम लिख सकते स्थापना जी न, सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना के भेद से दो प्रकार है, जिसको हम तदाकार और अतदाकार कहते हैं। ये अपना विषय भी बहुत निक्षेपों का बहुत बार हुआ है। जिन भगवान के आकार रूप से स्थित द्रव्य सद्भाव स्थापना जिन है, जिनेन्द्र भगवान के आकार के समान, यानी जैसे हम मूर्ति बनाते हैं संगमरमर की, तो जिनेन्द्र भगवान का जैसा आकार है वैसे उसमें आकार, वैसे आकार में हम जिनेन्द्र भगवान की स्थापना करते हैं, तो उसको हम सद्भाव स्थापना कहेंगे। विपरीत असद्भाव स्थापना जिन है, अभी ये जो नहीं है परंतु कभी कभी वो अक्षत में या लव में, हम अभी कहीं है जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति नहीं है, तो ये अतदाकार में भी वो जिनेन्द्र भगवान है ऐसी स्थापना करते हैं और पूजन करते हैं, तो वहाँ असद्भाव स्थापना कहते हैं। द्रव्य जिम आगम और नु आगम के भेद के भेद से चाहिए, दो प्रकार के हैं, यानी उनको कैसे कहेंगे हम, आगम द्रव्य जिम और नो आगम द्रव्य जिम। जिन प्रावृत का जानकार, जिन प्रावृत यानी जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप बताने वाला जो शास्त्र है उसको जिन प्रावृत कहेंगे, उसको जानने वाला जो जीव है जानकार, फिर क्या लेना अनुपयुक्त, उसमें जो उपयोग नहीं है उसका, है तो जानने वाला परंतु उपयोग अभी अन्यत्र नहीं, अन्यत्र है वो शास्त्र में नहीं है, और संस्कार के विनाश से रहित जीव आगम द्रव्य जिन है। संस्कार का विनाश रहित यानी वो अभी उसके धारणा में चल रहा है, क्या जानकार है ना, वो उसकी जानकारी का संस्कार नष्ट नहीं हुआ है, वो उसके हर पर्याय में उसका ज्ञान चल रहा है, उसको संस्कार कहते, धारणा में वो बना रहता है, तो उस संस्कार से रहित ऐसा जो जीव है उसको कहेंगे आगम द्रव्य जिन। हमने देखा ना द्रव्य निक्षेप जो है उसके आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप से दो भेद होते हैं। किसी भी करना है मंगल का कहो तो मंगल में भी आगम द्रव्य मंगल, नो आगम द्रव्य मंगल, उसमें क्या है आगम में क्या है, आगम का जानकार लेना, परंतु द्रव्य निक्षेप में लेना है अनुपयुक्त, भाव निक्षेप में हम लेंगे वो उसी में उपयोग जिसका चल रहा है उसको लेंगे। द्रव्य का अर्थ ही होता है वर्तमान पर्याय में नहीं है परंतु भूत भविष्य के पर्याय में हो सकता है, ऐसे ही जीव लिया उसको। अब नो आगम किसको कहना, आगम है जानने वाला, और नो आगम में नो आगम द्रव्य जिन वो उसके भेद बताएंगे क्या एक शरीर, नो आगम है नहीं जानने वाला, तो नहीं जानने वाला कौन है, वो ज्ञायक का शरीर वो भी नहीं जानने वाला, या कोई ऐसा भी जीव होगा कि वो भविष्य में जानेगा अभी नहीं जानने वाला है, उसको भी बताएंगे। तो एक भेद हुआ ज्ञायक शरीर, दूसरा है भव्य, भव्य ने भावी में जो जानेगा उसको भव्य का, ये भव्य अभव्य की बात नहीं है, भव्य नो आगम द्रव्य जिन की बात है, भविष्य काल में जो जीव जानेगा उसकी बात है, उस जीव की बात है, ज्ञायक शरीर में उसके शरीर की बात है। और तद व्यतिरिक्त के भेद से तीन प्रकार के, उनमें ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य जिन भव्य वर्तमान और समुज्जित के भेद से तीन प्रकार के। अपनी भाषा में ज्ञायक शरीर जो है यानी जो जानने वाले का शरीर, वो शरीर वर्तमान का भी हो सकता है, पूर्व भव का भी शरीर हो सकता है और भविष्य का भी होता है, तो उसके लिए उन्होंने तीन शब्द कौन से लिए, भव्य ने भावी, भावी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य जिन। अभी जो अभी तो वो ज्ञायक का शरीर ज्ञायक है अभी, परंतु उसका अगले भव का शरीर भी लिया उसने नो आगम द्रव्य जिन। दूसरा वर्तमान तो समझ सकते हैं, अभी का जो शरीर जानने वाले के अभी के शरीर की बात, और समुज्जित यानी उसके लिए कौन सा शब्द आया था, भूत, भूत का लिए तीन प्रकार के शंका। इस अचेतन तीन शरीरों के जिन संज्ञा कैसे संभव है, वो तो नहीं जानने वाला है। नो आगम का ही अर्थ है नहीं जानने वाला है। शरीर तो कुछ नहीं जान रहा है, फिर भी उसको क्यों जिन संज्ञा दी? नहीं, क्योंकि जिस प्रकार धनुष सहचार रूप युक्त पर्याय से अतीत अनागत और वर्तमान मनुष्यों की धनुष संज्ञा होती है, क्या कहते हैं जो धनुर्धारी जिसको कहते हैं ना, धनुष धारण करने वाला, तो धनुष का सहचार, सहचार ने उसके साथ है, तो उसके साथ वाली जो पर्याय है, ऐसे जो पर्याय का जो अतीत अनागत और वर्तमान मनुष्यों को भी धनुष कहते हैं। पहले भाग में ये बात आया था, ये इतने धनुष जा रहे हैं, तो क्या धनुष जा रहे हैं कि वो सेना जा रही है? परंतु वो धनुर्धारी जा रहे तो वो धनुष जा रहे सके। हम गांवों में जाते हैं ना, तो वहां अभी चातुर्मास आया है, तो मान लेते कोई 20 मुनियों का संघ आया होगा, 10 मुनियों का संघ आया, तो वहां इसे कहने की पद्धति, यहाँ भी 20 पीछी है, ऐसे कहते भी है, यानी लौकिक में भी ऐसे शब्द यहाँ यूज होते हैं, हमारे यहाँ इतनी पीछे आएगी, ऐसे कहते हैं। हाँ, 20 थाना, अच्छा, हाँ, ऐसे कहने की पद्धति। तो ऐसे यहाँ कहेंगे इतने धनुष जा रहे, तो वहां भी धनुष में उपचार किया व्यक्तियों का, तो धनुष तो कहीं से कहीं नहीं जाता है, है? उसी प्रकार जिनके आधार रूप पर्याय से अति तनागत और वर्तमान शरीरों के द्रव्य जिनत्व के प्रति कोई विरोध नहीं है, यानी उनको भी द्रव्य जिन कहने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जानने वाला तो जीव है और उस शरीर को भी हम कहेंगे। शंका। अनुपयुक्त जीव द्रव्य की युक्त आगम संज्ञा है, अनुपयुक्त अनुपयोगी है, उसका उपयोग उसमें नहीं है, जानकार है परंतु उपयोग उसका उसमें नहीं है, ऐसा जो अनुपयुक्त जीव है उसकी युक्त आगम संज्ञा, उसको आगम द्रव्य जिन कहा, ऐसे ही इन शरीरों की आगम संज्ञा क्यों नहीं दी? देखो क्या कहते हैं, जानकार जीव जो अनुपयोगी है उसमें, उसको तो आगम जिन कहा और इन शरीरों को नो आगम जिन कहा, तो इनको भी आगम जिन कहना था, उनको नो आगम जिन क्यों कहा, ऐसा प्रश्न है। क्योंकि दोनों में उपयोग अभाव की अपेक्षा, ये उपेक्षा लिखा है, अपेक्षा चाहिए, अपेक्षा चाहिए, उपेक्षा लिखा है ना, उसका अपेक्षा करो। देखो शंकाकार में दूसरी लाइन, दोनों में उपयोग अभाव, दोनों के ही उपयोग का अभाव है, जीव में वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं है और शरीर में तो उपयोग होता ही नहीं है, तो उसकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है, ऐसे शंकाकार पूछ रहा है। समाधान, नहीं कि क्योंकि इन शरीरों में आगम संस्कार का अभाव होने से उक्त संज्ञा का अभाव है। जीव में तो अभी उसका उपयोग वहां नहीं है, परंतु शरीर में तो वो तो कभी उपयोग रहित ही होता है, वो तो अचेतन है, तो उसमें आगम संस्कार का तो अभाव ही है, शरीर में कुछ नहीं है, तो उक्त संज्ञा का अभाव है। ये तो ज्ञायक शरीर की बात है। दूसरा जो भेद है, भविष्य काल में जिन पर्याय से परिणमन करने वाला भावी द्रव्य जिन है, यानी द्रव्य जिन, भावी द्रव्य जिन कौन सा? नो आगम द्रव्य जिन, भावी नो आगम द्रव्य जिन, ऐसे पूरी संज्ञा होगी उसकी। शंका। भविष्य काल में जिन प्रावृत को जानने वाले वो भूतकाल में जानकर विस्मरण को प्राप्त हुए जीव के नो आगम भावी द्रव्य जिनत्व क्यों नहीं स्वीकार करते? प्रश्न समझ में आया? अभी वर्तमान में तो जानकार है नहीं, इसलिए नौ आगम कहा। तो भावी नौ आगम में तो वो भविष्य काल में जानने वाले भी है। तो ऐसा कहते जो जिन्होंने भूतकाल में जाना है, परंतु अभी तो विस्मरण हो चुका है, संस्कार में नहीं है। पहले बात क्या की थी, संस्कार में चल रहा है। तो यहाँ कहते भविष्य काल में भूतकाल में जाना था, अभी भूल गए है, उसको भी इसमें ले लो। तो उसको क्यों नहीं कहते नौ आगम भावी द्रव्य जिनत्व, क्यों नहीं बताते उसका समाधान? नहीं, क्योंकि आगम संस्कार पर्याय का आधार होने से अतीत अनागत व वर्तमान आगम द्रव्य के नौ आगम द्रव्यत्व का विरोध है, यानी उसका आगम द्रव्यत्व कहेंगे, उसको नौ आगम द्रव्य नहीं कहेंगे उसको। अब पर्याय वो किसके आधार से है? उस जीव के आधार से। अतीत अनागत और वर्तमान आगम द्रव्य जो है, आगम द्रव्य कौन है? अभी जो जीव द्रव्य है उसके नौ आगम द्रव्यत्व का विरोध है, उसमें आगम द्रव्य में उसको ले लेंगे। अब तद व्यतिरिक्त इनके अलावा जो जीव भी नहीं है और जो उसका शरीर भी नहीं है, इनके अलावा उसको कहते हैं तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त द्रव्य जिन, द्रव्य जिन ने द्रव्य नो आगम जिन या नो आगम द्रव्य जिन ऐसा कहेंगे, उसमें तीन प्रकार है, सचित्त अचित्त और तदुभय। तदुभय ने दोनों जिसमें है, ऐसे तीन प्रकार के हैं। ऊंट घोड़ा और हाथियों के विजेता सचित्त द्रव्य जिन है। देखो जिन यानी जीतने वाला, उसको जिन कहते हैं। अब यहाँ जिनेन्द्र भगवान की बात नहीं है, तो जो अन्य जो है तद व्यतिरिक्त की बात है, जो आगम और ये उसकी बात नहीं है, आगम को जानने वाले नहीं जानने वाले की बात नहीं है, अन्यत्र जो लौकिक में भी जो बातें आती उसको भी यहाँ लिया है। तो ऊंट घोड़ा हाथियों के विजेता उसको सचित्त द्रव्य जिन कहा। हिरण्य सुवर्ण मणि और मोती आदिकों के विजेता अचित्त द्रव्य जिन है। सुवर्ण सहित कन्यादिकों के विजेता, जिन्होंने अलंकार धारण किए हैं ऐसे कन्या के जो विजेता हैं, सचित्ता चित्त द्रव्य जिन है। पहले स्वयं वरादि में वो तो जीत कर ले जाते थे ना, उसकी बात है। सचित्त चित्त द्रव्य जिन, ये तो द्रव्य जिन की बात हुई। द्रव्य जिन में हमने दो भेद देखे, आगम और नो आगम। आगम में जो शास्त्र के जानकार, कौन सा शास्त्र? जिन प्रावृत यानी जिनेन्द्र संबंधी जो कथन करने वाला प्रावृत है, उसको जानने वाले जो जीव है, परंतु वर्तमान में जो उपयोग से रहित है उसको क्या कहा? आगम जिन, आगम द्रव्य जिन। और जो नो आगम द्रव्य जिन में किसको लिया? ज्ञायक शरीर, फिर भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर में भी भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य का, तीन प्रकार के लिए ज्ञायक के शरीर। अब जो वर्तमान की बात है, भविष्य में किसको लेना है? ऊपर का बंद करना, लेफ्ट साइड का। अभी जरा निश्चिंत हो जाए, हम रिवीजन करें ना। देखो नौ आगम में किस किस को लिया? ज्ञायक शरीर, भावी, भावी को या भव्य को, और तद व्यतिरिक्त। ज्ञायक शरीर में भूतकाल का शरीर, वर्तमान का शरीर या भविष्य का शरीर लिया। भावी में जीव को लिया, जो आगम का जानकार नहीं है परंतु भविष्य में जो जानकार होने वाला है, इसे जीव को लिया। ज्ञायक शरीर में शरीर को लिया था, भावी नो आगम में जो अभी नहीं जान रहा है भविष्य में जानेगा उसको लिया। तद व्यतिरिक्त इनके अलावा जो है हाथी आदि को विजेता, उसको भी जिन कहा। फिर सुवर्ण वगैरह अचेतन पदार्थों के विजेता, उसको अचित्त तद व्यतिरिक्त कहा। और सुवर्ण आदि से सहित कन्या आदि को जो जीतने वाला है, सचित्ता चित्त कहा। यहाँ तक अभी हमने देखा। अब ये तो द्रव्य की बात हो गई, द्रव्य जिन की बात हो गई, यानी द्रव्य निक्षेप की बात यहाँ होती है, समाप्त होती है। अब कौन सा निक्षेप रह गया? भाव निक्षेप। क्योंकि हमने देखा ना, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब भाव निक्षेप यानी भाव जिन की बात करेंगे, भाव जिन में भी आगम नो आगम की बात करेंगे। अभी पढ़ेंगे, देखो आगम और नो आगम के भेद से भाव जिन दो प्रकार है, जिन प्रावृत का जानकार उपयुक्त जीव। द्रव्य जिन में, द्रव्य आगम जिन में क्या लिखा था, या आगम द्रव्य जीव में, जिन में आगम का जानकार और अनुपयुक्त दिया। भाव में आगम का जानकार और उसी में जिसका उपयोग लग रहा है उसको लिया, वो आगम भाव जिन है। अब नो आगम भाव जिन में किस किस को लेना है? तो नो आगम भाव जिन उपयुक्त और तत् परिणत के भेद से दो प्रकार के हैं। जिन स्वरूप को ग्रहण करने वाले ज्ञान से परिणत जीव उपयुक्त भाव जिन है, जिन पर्याय से परिणत जीव तत्परिणत भाव जिन है। ये जिनेन्द्र देखो, जिन स्वरूप से ग्रहण करने वाले ज्ञान से परिणत जीव उपयुक्त भाव जिन है। जिन स्वरूप जो है, जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप है, उसको ग्रहण करने वाला ज्ञान, ज्ञान जानना, उसको जानने वाला जो ज्ञान है, उससे जो परिणत जीव है, भाव में तो उस रूप परिणति लेना है, वो जीव उपयुक्त भाव जिन है। और जिन पर्याय से परिणत, जो स्वयं जिनेन्द्र भगवान रूप पर्याय से परिणत हो गए हैं, ऐसे जीव तत्परिणत भाव जिन है। भाव जिन उन्हीं को कहा ना, पहले कौन से लिए थे? आगम भाव जिन लिए थे, यानी जिनेन्द्र संबंधी शास्त्र के जानकार लिए थे। अब जिनेन्द्र का ही ज्ञान से परिणत, यानी जिनेन्द्र संबंधी ज्ञान से परिणत जीव लिए एक, और जो स्वयं जिनेन्द्र भगवान लिए, परिणत यानी उस रूप पर्याय में प्राप्त, जो स्वयं जिनेन्द्र भगवान हो गए उसको तत्परिणत कहा। तत्परिणत भाव जिन, स्वयं जो जिनेन्द्र भगवान हुए हैं, अभी वर्तमान में जो जिनेन्द्र भगवान है, उन्हें तत्परिणत भाव जिन कहा। तो हम नमस्कार किसको करेंगे? तत्परिणत भाव जिन को भी करेंगे और वो स्थापना वालों को भी करेंगे। देखो शंकागार पूछ रहा है, इन जिनों में किन जिन को यह नमस्कार किया गया? यह नमस्कार है नमो जिनानम ग्रंथ के आदि में जो लिखा है, वो कौन से जिनों की यहाँ बात है? तो कहते हैं तत्परिणत भाव जिन और स्थापना जिन को यह नमस्कार किया गया है। शंका, ये शंका समाधानी ज्यादा है इसमें। अनंत ज्ञान, दर्शन, वीर्य, वीरति और क्षायिक सम्यक्त्वादी गुणों से परिणत जिन को भले ही नमस्कार किया जाए, क्योंकि उसमें देवत्व पाया जाता है। जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप यहाँ बताते हैं, वो कैसे है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ये पूर्ण वीरति यानी क्षायिक चारित्र, क्षायिक सम्यक्त्व आदि गुणों से जो परिणत है, उस रूप जो बने हैं, उन जो साक्षात जिनेन्द्र भगवान है, उन्हें तो नमस्कार करना योग्य है, क्योंकि उनमें देवत्व पाया जाता है। किंतु जिन गुण से रहित स्थापना को नमस्कार करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें विघ्नोत्पादक कर्मों के विनाश करने की शक्ति का अभाव है। ये जो स्थापना जिन है, पंचकल्याणक में जिनको, जिनकी स्थापना की जाती है, उन्हें क्यों नमस्कार करना है? उसका समाधान, उक्त शंका होने पर यह परिहार करते हैं, जिन देव अपनी वंदना में परिणत जीवों के ही पाप के विनाशक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर उनमें वितरागता के अभाव का प्रसंग आता है। क्या कहते हैं? कि जिनेन्द्र भगवान अपने को नमस्कार करने वाले जो उनके पापों का नाश करते ऐसा अगर कहेंगे तो वो तो अन्य मति और इनमें क्या फर्क हुआ, वो भी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं और ये भी अपने अपने नमस्कार करने वालों के पाप का नाश करेंगे। न वे सब पापों जीवों के पाप को नष्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर जिन नमस्कार की विफलता का प्रसंग आता है। क्या कहते हैं, वो अपने ही भक्तों के पाप का नाश करते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वितरागता उनकी टूट जाएगी। अब कहेंगे वो सभी जीवों के पाप का नाश करते हैं तो वो करते फिर जिनेन्द्र को नमस्कार क्यों करना, ये इसका अर्थ फिर दोबारा देखो। देखो न वे सब जीवों के पाप को नष्ट करते हैं, यानी अपने भक्तों को नमस्कार करने वालों की नहीं, सबके ही पाप नाश करते। यदि ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, ऐसा होने पर जिन नमस्कार की विफलता हो जाएगी, फिर जिनेन्द्र को नमस्कार करने की जरूरत नहीं होगी, वो बिना काम का हो जाएगा, क्योंकि नमस्कार किए बिना सभी के पाप धुल रहे हैं ना, तो नमस्कार क्यों करें। तब परिशेष रूप से, यानी अब जो रहे क्या बात, परिशेष रूप यानी परिशेष न्याय कहो या परिशेष रूप, अभी कौन सी बात रह गई है, जिन परिणत भाव और जिन गुण परिणाम को, जिन परिणत भाव जिनेन्द्र जैसे जिन परिणत भाव और जिन गुण परिणाम को, जिनेन्द्र भगवान के गुण जो है उनके परिणाम को पाप का विनाशक स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कर्मों का क्षय घटित नहीं होता। वह भी जिन गुण परिणाम भाव परिणम हुआ है, परिणाम भाव जिनेन्द्र के समान अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य विरति और सम्यक्त्वादी गुणों के अध्यारोप से युक्त, अध्यारोप यानी हमने उसमें आरोप कर दिया ना, मूर्ति में हमने उसको स्थापना कर दी, यानी उसका अध्यारोप किया और अध्याहार के बल से ही उसका आधार क्या है, उस मूर्ति के आधार से हमने उसमें वो अनंत ज्ञानी है, क्योंकि हम उसमें वो सारे स्थापना के वो विधि पूर्वक स्थापना करते हैं ना, जैसे गर्भ कल्याणक हुआ, गर्भ हुआ, फिर वहाँ एक मूर्ति छोटी देखते हैं विधि नायक जिसको देते, उसमें सारे विधि उसमें भी करते हैं और बड़ी मूर्ति पर भी मंत्र आदि के द्वारा उसके आरोपित करते हैं, आरोप करने ने अध्यारोप करना। तो वहां भी ये गर्भ हुआ, अभी जन्म हुआ, फिर इंद्र आए उन्होंने उत्सव मंगल सारा किया, फिर दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, सभी उस मूर्ति पर सारे ही उपचार किए जाते हैं, तो उसमें हम वो है ऐसी स्थापना करते हैं, तभी तो उसी को नमस्कार करते हैं। एक कैलेंडर वाले भगवान को नहीं नमस्कार करते, कैलेंडर के चित्र उसको मूर्ति तरीके या भगवान तरीके उसकी पूजा करे, उसकी कोई आरती उतारे तो वो तो मिथ्यात्व का दोष हो जाएगा, उसमें वो भगवान नहीं है। जहां विधि पूर्वक स्थापना की जाती है उनके साथ भगवान जैसा व्यवहार होता है, क्योंकि हम स्टैचू करके भी घर में रखते हैं, रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, परंतु उनका अभिषेक किया, प्रक्षाल किया, अभी उनको अष्टद्रव्य से अर्घ्य दिया, ये बातें उसके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वे जिनेन्द्र भगवान नहीं है। देखो वह भी जिन गुण परिणाम भाव जिनेन्द्र के समान अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य विरति और सम्यक्त्वादि गुणों के अध्यारोप से युक्त और अध्याहार के बल से ही जिनके साथ एकता को प्राप्त हुई स्थापना से भी उत्पन्न होता है। ये समयसार नाटक में लिखा है ना, किस में लिखा है, जिन प्रतिमा जिन सार, जिनेन्द्र प्रतिमा जिन के समान है, जिनेन्द्र भगवान के समान है। इसी कारण जिनेन्द्र नमस्कार के समान जिस मूर्ति में जिन की स्थापना की गई है वो स्थापना रूप जिन को नमस्कार भी पाप का विनाशक है, ऐसा क्यों नहीं स्वीकार करते, क्योंकि दोनों में कोई विशेषता नहीं है, विशेषता का अंतर नहीं है, क्योंकि उनमें भी हमने सारे ही गुणों को वहां स्थापित किया है। अध्यारोप करने ने उसमें डालना, उसमें आरोपित करना, क्षेपण करना। हाँ, अधि आरोप। हाँ, अब शंका। नाम जिन, द्रव्य जिन और नो आगम उपयुक्त भाव जिन को नमस्कार क्यों नहीं करते? तो जिसका जिसका जिन नाम रखा है उस सबको भी नमस्कार करो, ऐसा कहते। द्रव्य जिन को भी नमस्कार करो, यानी जो जिन आगम का अभ्यास करने वाले उसको भी जिनेन्द्र के समान नमस्कार करो, और नो आगम उपयुक्त वाले को भी नमस्कार करो। तो कहते हैं नहीं करते, क्योंकि उनमें जिनत्व और जिन स्थापनात्व का अभाव है। कारण कि उन तीनों जिनों में जिनत्व तो बनता ही नहीं, क्योंकि अनंत ज्ञानादि युक्त जिनके कारणभूत गुणों से रहित। कारणभूत एक शब्द चाहिए। उनके जिनत्व का विरोध है। क्या कहते हैं? ये नाम जिन वगैरह, ये नाम जिन ने, द्रव्य जिन वगैरह, वो जिन संबंधी शास्त्र के जानकार को कहा है, आगम द्रव्य जिन वगैरह। तो उसमें तो कोई जिनेन्द्र भगवान के गुण तो वहां है ही नहीं है, इसलिए उनको नमस्कार भी नहीं करते। स्थापनापना भी उनके नहीं है, क्योंकि उनमें जिनत्व के आरोप का अभाव है। ये आरोप की बात है ना, अध्यारोप शब्द आया था, अधि और आरोप। और यदि आरोप है तो वे नामादिक जिन नहीं हो सकते, क्योंकि उनका स्थापना में अंतर्भाव होता है। यानी जिनत्व का आरोप करेंगे तो वो नामादिक जो है उसको स्थापना में अंतर्भाव हो जाएंगे उसका। यदि उनमें जिनत्व के गुण हम मानेंगे तो वो तो स्थापना जिन में अंतर्भाव हो जाएगा उनका। नाम जिन वगैरह अलग अलग रहेंगे नहीं, और जिनत्व व जिन स्थापना से रहित अन्य जिनों में किया गया नमस्कार पाप प्रणाशक नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा होने में अति प्रसंग दोष आता है। ये पूछते हैं ना, ये प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं क्यों नहीं नमस्कार करना, ये उत्तर आ गया सब इसमें। शंका,
ढोलक पढ़ने के पहले से अपनी मान्यता थी, भूल गए।
अब शंकाकार फिर पूछता है, यदि ऐसा है तो तीन कालों से विशेषित मुनि व जिनका शरीर एवं ऊर्जयंत चंपापुर और पावानगर आदि को किया जाने वाला नमस्कार निष्फल हो जाता है। ऊर्जयंत का अर्थ क्या है? हाँ, आप क्या कहते हैं? मयंक भाई नहीं मालूम, देवेंद्र भाई, देवेंद्र भाई का ध्यान कहाँ है? हाँ, मैं क्या पूछ रही हूँ मालूम नहीं, गए नहीं कभी। ये जरा जिसको कहते हैं ना कि क्या जनरल नॉलेज नहीं, एक किसकी चंपापुर और पावापुर लिया है, कौन सा रह गया? गिरनार है, उर्जयंत गिरनार का नाम है। पहले भी ये बात यहाँ यही आई थी एक बार। ये तो कॉमन सेंस जानना है ना। ये सिद्ध क्षेत्र नहीं ना, पावापुर लिया, चंपापुर लिया, सम्यक शिखर को छोड़ा है मगर उर्जेंद को लिया, गिरनार को लिया है। हाँ, देखो क्या कहते हैं, यदि ऐसा है तो तीन कालों से विशेषित मुनि वह जिनका शरीर एवं उज्जैन चंपापुर और पावानगर आदि को किया जाने वाला नमस्कार, जिसको यहाँ से वो क्षेत्र हुआ है सिद्ध क्षेत्र जिसको कहते हैं, वो निष्फल हो जाता है, तो उन क्षेत्रों को भी क्यों नमस्कार करना है। नहीं, वे उज्जैन नाम आता ही है, उज्जैन कहती है। गिरनार को उज्जैन पर्वत, पर्वत का नाम ही उज्जैन है। देखो अब कहते हैं, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे उनके सद्भाव स्थापना या असद्भाव स्थापना में अंतर्भूत है, इसलिए उन्हें किया गया नमस्कार निष्फल मानने में विरोध आता है। वहां क्षेत्र के लिए उसको नमस्कार नहीं करते हैं, परंतु वहां से सिद्ध हुए तो उनका गुणस्मरण हम करते हैं। सद्भाव स्थापना नमस्कार और असद्भाव स्थापना नमस्कार के फलवान होने पर जिन वो पूरा न चाहिए जिन स्थापनात्व को प्राप्त जिन स्थापना कर जिन स्थापनात्व को प्राप्त सबों को किया गया नमस्कार फलवान होता है, कहा भी है। वो स्थापनापना आ गए ना उसमें, स्थापनात्व कहा उसमें। कहते आलम्बणे भरियो लोगो जाई दुमनस खवयस जम जम मनसा पसई तम तम आलम्बणम होई। ये भगवती आराधना का 1876 नंबर का वो उन्होंने गाथा प्रस्तुत की है। यहाँ उसका अर्थ देखते, यहाँ लिखा है, देखो ध्यान में मन लगाने वाले क्षपक के लिए। देखो ये बहुत अच्छी बात यहाँ आ गई, क्या कहते हैं क्षपक में क्या किया है उन्होंने, ध्यान लगाया ना, हमने देखा वो शुक्ल ध्यान होता है वहां, कौन सा शुरू में कौन सा होता है, पृथक वितर्क बीचा। तो ध्यान में मन लगाने वाले क्षपक के लिए यह लोक ध्यान के आलम्बनों से परिपूर्ण है। क्या कहा, पूरा लोग ध्यान का आलंबन, किसी भी पदार्थ के आलंबन से ध्यान हो सकता है, क्योंकि वहां लिखा ना वो छह द्रव्य है इस विश्व में, तो द्रव्य से द्रव्यांतर उनका वो ध्यान का विषय भी चेंज होता रहता है इसमें, परंतु एक विषय पर अंतर्मुहूर्त उनका ध्यान चलेगा। तो द्रव्य से द्रव्यांतर, शब्द से शब्दांतर, ऐसा वो उसमें आता है व्यंजनांतर वगैरह, योग से योगांतर, योग भी पलटता रहता है और ध्यान के विषय भी पलटते रहते हैं, अंतर्मुहूर्त तो है ही है। तो क्या है उनके आलम्बन, किसका है, पूरा लोक है। देखो ध्यान में मन लगाने वाले क्षपक के लिए, वो अपने की अपनी की बात छोड़िए, क्षपक के लिए भी पूरा लोक या लोक ध्यान के आलम्बनों से परिपूर्ण है। ध्यान में ध्याता यानी ध्यान करने वाला जो जो मन से देखता है, अर्थात जिस जिस वस्तु का मन से विचार करता है, वह वह आलम्बन हो जाता है। या अभी हमने जो तीन भुवन का स्वरूप देखा है, तो त्रिलोक को जानना, हमें तो आत्मा को जानना है, ये बात आती है ना, तीन लोक को क्यों जानना। अरे मुनियों को भी तीन लोक को जानते रहते हैं, उसका आलम्बन है, और मन तो एक ही विषय पर कोई चिंतन करता है, स्थिरता से उसको जानते रहता है, वो उसका ध्यान का आलम्बन है, ध्यान का देह हो गया, वो विषय हो गया उसका। निचली भूमिका में परवस्तु का ध्यान करो या विचार करो तो उससे राग उत्पन्न होता है, इसलिए वहां का वो निजी शुद्धात्मा को जानो, पर को जानने की जरूरत नहीं, पर को जानने से राग नहीं होता है ना, नहीं तो ये तो क्षपक कैसे जानते। हाँ आई थी, देखो ध्यान, ये बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी, ये पूरा लोक का ही आलम्बन है उसको, तो इस पुस्तक में तो बिल्कुल मार्के की बात है सब। ध्यान का आलम्बन देख, शंका हो गया समझ। बाकी बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हूँ।